सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संगत महाराष्ट्र के संत समागम के अवसर पर आप सभी के इस विशाल रूप में दर्शन करने का स्वअवसर प्राप्त हो रहा है और ऐसी भावनाओं से युक्त आप यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी के दर्शन करके प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहाँ पर हर बरस ऐसा विशाल आयोजन होता है और आपका बढ़ता हुआ परिवार उसके कारण कुछ वर्षों के बाद मैदान बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थान उतना बाकी रहता नहीं है और ये पहली दफ़ा यहाँ पर खारगढ़ के इलाके में ये आयोजन हो रहा है। पिछले कुछ बरस नवी मुंबई के ही अरौली के इलाके में जनवरी के महीने में ही लगभग इन्हीं दिनों में समागम के आयोजन होते आए और उससे पहले कहीं पर बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड, कहीं पर नेशनल पार्क की तरफ, कभी परेल, कभी दादर, कभी नर्दुला टैंक मैदान, पता नहीं कितने ही मैदान, कहाँ से ये यात्रा आरंभ हुई मुंबई में। तो आज इतना विशाल रूप जहाँ पर महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्तजन चल कर आए और उसके अलावा भी अन्य स्थानों से और विश्व के अनेकों मुल्कों से महापुरुष चल कर आए, जो कि ऐसे मौके, ऐसे अवसर को एक और ऐसा अवसर मान रहे हैं, ऐसे आयोजन का उसको एक अवसर के रूप में देखते हैं। जहाँ पर नवंबर के महीने में दिल्ली का सालाना संत समागम होता है, तो वहाँ पर भी अनेकों भक्तजन पहुँचते हैं और इस मौके पर भी फिर से यहाँ पर पहुँचकर अपनी ये खुराक लेते हैं, जो खुराक जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जाती है, जो एक मजबूती देती है, जो मानसिकता को अपनी उस पटड़ी पर रखती है जो कि भक्तों वाली मानसिकता है। तो इस जज्बे से युक्त होकर कई तो दिल्ली में नहीं पहुंच पाते, तो उन्होंने यही निश्चय कर लिया होता है कि चलो दिल्ली नहीं जा पाए तो मुंबई चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी दिल्ली जैसा ही रूप बन जाता है। ऐसा ही एक विशाल रूप जहाँ पर प्यार की महक आ रही है, जहाँ पर केवल प्रेम की बातें नहीं हो रही हैं, जहाँ पर मंच से जिस जिस को भी शब्दों के द्वारा अपने भाव रखने का मौका मिला, उन्होंने एक नुमाइंदगी की आप सभी की, क्योंकि हर किसी को मौका तो मिल नहीं सकता, वरना तो अपनी बात रखने में सक्षम आपने मिसालें देख ही ली हैं आँखों के सामने, कि छोटे से बच्चे भी पुरजोर ढंग से और आवाज़ से ये सत्य का पैगाम औरों तक पहुंचाने में सक्षम है, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। तो चंद ऐसे भक्तों को मौका मिलता है समय की मर्यादा के हिसाब से, सीमित समय को ध्यान में रखते हुए, वरना तो अपनी बात रखने में कितने कितने सक्षम हैं जो असरदायक ढंग से ये सच का पैगाम दे सकते हैं, मानवीय गुणों का बयान कर सकते हैं। तो आज भी जिस जिस को भी अवसर मौका मिला, चाहे उन्होंने अभंगों का सहारा लिया, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी का सहारा लिया, या फिर उन्होंने कबीर जी की वाणी का सहारा लिया, या फिर उनके अपनी निजी एक्सपीरियंसेस, या फिर जो उनको ये सत्य की प्राप्ति हुई, जो जीवन जीने का ढंग उनको प्राप्त हुआ, जो नज़रियों में बदलाव आया उसका जिक्र किया, और पीड़ा भी जताई जो संसार के गिरते हुए म्यार को देखकर महसूस होती है। अवश्य पीड़ित होते हैं जो ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो मानवता इंसानियत में यकीन रखते हैं, तो उनको अवश्य पीड़ा होती है इंसान के गिरते हुए म्यार को देखकर। जहाँ पर इंसान ऐसी गिरावट की ओर जाता चले जा रहा है, एक जैसे कि ये पटरी से हट गया है। आजकल इंटरनेट का युग है और अक्सर कोई भी बात करता है, एक दूसरे को से कनेक्शन बनाता है और कहता है कि ऑनलाइन है, वो भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ। तो उस लिहाज से तो ऑनलाइन हैं, लेकिन इंसानियत की पटरी से देखे तो ऑफलाइन हो गए हैं, लाइन से बाहर हो गए हैं, वो रेखा छोड़ दी है, वो पथ छोड़ दिया है। जहाँ पर कि वही ऑनलाइन रहने के कारण पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या अपलोड कर दिया जाता है, क्या क्या ऐसी गिरावट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि वास्तविकता में इंसान की मानसिकता ऐसी होती चली जा रही है, वरना प्रोज एंड कॉन्स, लाभ और नुकसान हर चीज़ में है। लेकिन इंसान अगर उन मूल्यों के साथ जुड़ा रहता है, अगर वो जानता है कि भलाई मेरी और औरों की किस में है, तो फिर वो हर ऐसे आविष्कारों का, हर ऐसे साधन का, हर ऐसे पदार्थ का वो इस ढंग से इस्तेमाल करता है कि उसको उपयोगी बना लेता है। उपयोगी मतलब फ्रूटफुल, फ्रूटफुल यानी कि सेल्फिशनेस के भाव के साथ नहीं, फ्रूटफुल एक सेल्फलेसनेस के भाव से युक्त होकर कि वाकई उससे मेरा और औरों का भला है। तो हर उस साधन का वो इस ढंग से उपयोग करता है और ना ही उसमें इतना खचित और गलतान हो जाता है। वो हमेशा ही ऐसे ऊंची अवस्था में रहता है, ऊंचे का ध्यान, ऊंचे का एहसास ये करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करता है। ये मालिक खालिक, ये ऊंचे से ऊंचा, सबसे ऊंचा, और यही ऊंचा जो कण कण में बसता है, घट घट में बसता है, तो इस ऊंचे को ऊंचा मानते हुए, इसका एहसास करते हुए अपनी ऊंचाई बढ़ा लेते हैं, अपने कद को ऊंचा कर लेते हैं और अपने भावों को ऊंचाई तक ले जाते हैं, नीचता वाले भाव तज देते हैं, संकीर्णताओं को तज देते हैं, विशालता को अपना लेते हैं। जो ये ऊंचा विशाल है, ये भी अपनी उस विशालता से युक्त हो जाते हैं। इनके लिए हम मानवीय गुण ही एक मूल्य रखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ का जिक्र हुआ, जो कि इस बार नवंबर के समागम में जो एक इसको एक टॉपिक या स्लोगन कह लें दिया गया, जैसे कि वननेस का नारा दिया गया। और पिछली बार मार्च अप्रैल में जब मुंबई आने का मौका मिला, जनवरी तो ऐसा समागम होता ही है, और वडोदरा गुजरात के समागम से पहले यहाँ पर आने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी जहाँ वननेस का तनारा चल ही रहा था, तो वहाँ पर भी रन फॉर वननेस एक ऐसी हाफ मैराथन रेस का आयोजन हुआ मिशन के द्वारा। तो कभी वननेस का नारा, कभी ह्यूमन वैल्यूज़ का नारा, ये दिया जाता है। कभी हामनी का, उससे पहले हामनी का, तो ये सारे वो ऐसे गुण हैं जो ऐसे पहलू हैं। वाकई अगर संसार के इंसानों के मनों में वो घर कर जाएं, तो फिर ये जन्नत बन जाए ये धरती। आज इंसान का गिरता हुआ म्यार जैसे दर्शाया भी जाता है महापुरुषों के द्वारा कि सिक्के की कीमत तो गिरती है, पीड़ा भी देती है, मुश्किलात भी हमें उससे महसूस होती है, लेकिन उससे कहीं अधिक पीड़ाजनक बात के इंसान गिरता जा रहा है। इसका नहीं गम गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कि कीमतें इंसान गिरी जाती है। कि ये जो गिरावट है ये कहीं अधिक ये पीड़ा का कारण है, ये नुकसान का कारण है। और ये इंसान इस कदर गलतान हो गया है ये दुनिया और दुनियादारी और लोभ और प्रलोभनों में, राम माझे मनी राम माझे ध्यानी, तो ये राम माझे मनी महापुरुष तो कह रहे हैं कि राम मेरे मन में, लेकिन संसार के इंसानों की हालत ये है कि अंग्रेजी वाला मनी, कि राम मेरा ही एक मनी ही मेरा राम है, दौलत ही मेरा राम है, ईमान ही मेरा राम, एक दौलत ही मेरा ईमान है। तो ये मालिक के प्रति ईमान नहीं रखता, मालिक को वो विशेषता नहीं देता है। ये दौलत को, शौहरतों को, ताकतों को, हुकूमतों को ये कितनी अहमियत देता है कि ये मालिक को आंखों से ओझल करता है। तो इसलिए ये गिरावट कि जिसके लिए रुपया पैसा ही भगवान है, ईमान है, उससे हटकर कुछ नहीं है, उसी के लिए ये सब कुछ करेगा, उसी के लिए अपनों को बेगाना बनाएगा, उसी के लिए दूसरों का हक छीनेगा, तो फिर ये गिरावट और दूसरों को भी पीड़ा देने वाली चाल। तो संत भक्तजन वो यही इंसानों को ये संदेश और ये पैगाम ये देते आ रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू इस धरती पर पैदा हुआ है इंसान मानव के रूप में, तो ये तुझे इस अमोलक श्वास मिले हैं और इन श्वासों का तू किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, ज़रा जागरूक हो और एहसास करके ये समय तेरा बीता जा रहा है। अभी नए वर्ष को हुए 23 दिन हुए हैं, 24वां दिन चल रहा है, और इस नए वर्ष में ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और अभी यहाँ आते हुए रास्ते में 3 स्थान मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पर भी दास नए साल का अवश्य जिक्र कर रहा था कि अभी 365 दिन में जो जो बीच में दिन निकलते थे तो उसका जिक्र करता था। आज 23 दिन बीत गए हैं, आज उसका जिक्र कर रहा है कि ये श्वास, ये पल, एक क्षण ये हाथों से निकलते जा रहे हैं। ये हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और इसको हम मूल्यवान आप ही इसकी हम कीमत डालते नहीं हैं। इसीलिए हम जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, उसको तजते चले जाते हैं। तो हम खुद ही अपने सांसों का मोल नहीं डालते। एक लिहाज से तो डालते हैं कि कहीं पर ये लगे कि बस मेरा अंत होने वाला है, मेरे सांस उखड़ने वाले हैं, मेरी कोई जान लेने वाला है, कहीं पर मेरा ये धड़कता हुआ दिल अचानक रुक जाएगा, उस वक़्त मुझे बड़ा एहसास होता है मृत्यु से ज़्यादा, क्योंकि जीवन प्रिय है, मृत्यु से भय लगता है। तो तो उस वक्त अवश्य श्वासों की कीमत मुझे उसका एहसास होता है। लेकिन वास्तविकता में देखे तो उन श्वासों का हश्र मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इंसान अगर वाकई ही गौर करे, और महापुरुष भक्तजन वही जो है इंसान का ध्यान इस ओर दिलाते हैं, जो इंसान को एहसास कराते हैं कि इंसान इस जीवन को सजा ले संवार ले ऐसी भावनाओं से, ऐसे गुणों से, और उसी के अंतर्गत कर ले ऐसा सुंदर व्यवहार जिसके कारण तेरी शोभा भी बनेगी, जिसके कारण तू वास्तविकता में माना जाएगा कि तूने अपने जीवन का, अपने श्वासों का, अपने लम्हों का, अपने पलों का, उसकी तूने उसकी कीमत डाली है। क्योंकि तूने उसके अंतर्गत तूने अब जीवन के सफ़र को तय किया है। तो ये एक संसार में जैसे वो कई दफ़ा दास वो मेंशन करता है, जिक्र करता है, एक अंग्रेज़ी की कहावत कि पीपल इन अ रूम बिकम हैप्पी व्हेन समबडी एंटर्स द रूम एंड पीपल इन द रूम आर हैप्पी व्हेन समबडी लीव्स द रूम, कि दोनों में एक फ़र्क। एक कमरे में इंसान मौजूद है, उसमें एक शख्स दाखिल हुआ, ही एंटर्स द रूम एंड ही मेक्स दोज प्रेजेंट हैप्पी। उसने अंदर दाखिल उसके होते ही जो कमरे में मौजूद थे वो खुश हो गए, खुश हो गए कि ये एक इंसान आया है खुशी देने के लिए। और दूसरा पहलू जो बताया कि कमरे में लोग जो उपस्थित हैं वो खुश हो गए कब, जब कोई उस कमरे से बाहर निकल गया। वो क्यों खुशी मना रहे हैं किसी के कमरे से बाहर निकलने से? क्योंकि वो इंसान जितनी देर कमरे में था उसने नाक में दम किया हुआ था, वो गाली गलौज के सिवाय उसकी ज़ुबान कुछ बोलती नहीं थी। वो जिस किसी को भी दिलों को दुखाते चले जा रहा था, तो उसका जाना लोगों को राहत मिली। तो ये एक मिसाल, एक उदाहरण कि हम भी सोचें कि हम किस कैटेगरी में हैं, हम किस पंक्ति में हैं, हमारा शुमार किस में आता है, क्या हम उनमें हैं जो कहीं पर भी चले जाएं प्यार की महक लेके जाते हैं, कोई हमारे पास आ जाए वो भी हमारे से हमसे प्यार की महक लेता है, या फिर मैं वो कोयला हूँ जो कि जैसे ठंडा कोयला ठंडा हो तो हमारे हाथ हमारे कपड़ों को काला कर देता है, और अगर गर्म हो जाए भट्टी में डाल दें तो उसको पकड़ लें तो छाले डाल देगा। यानी कि कोयले ने दोनों हालतों में नुकसान ही किया, ठंडा था तो काला कर दिया और भक गया और इतनी उस भट्टी में, और इतना गर्म कि हाथ लगाने से या कपड़ा छुआ तो जल गया, हाथ छुआ तो छाले पड़ गए। तो मैं भी विचारूं कि मेरे भी कहीं यही तो अवस्था नहीं है कि मैं या कालक देता हूं या फिर जलाता हूं। इस तरह से ये इंसान विचार करे, सोचे, और संतों की, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के वचन, महापुरुषों के आदेश उपदेश, वो यही इंसान को समझाते आ रहे हैं, झिंझोड़ते आ रहे हैं कि इंसान तू एहसास कर कि ये श्वास रूपी पूंजी तेरे हाथों से निकल रही है, छिन रही है, ये रुकने वाली नहीं है, ये पता ही नहीं चलता कब ये जीवन लीला संपन्न हो जाएगी, हमें ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता है कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। पिछले साल ही आपने देखा उत्तराखंड में कैसा एक प्रकोप हुआ। उससे चंद घंटे पहले तक भी किसी को ये मैं आस नहीं थी, या फिर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, कहीं गुजरात में भूकंप हुआ, कहीं सुनामी आ गई, कभी कुछ, तो ये मालूम नहीं पड़ता है कि क्या से क्या हो जाता है। या फिर जैसे पहले कहा कि चाहे अच्छे भले घर में बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, और बात करते करते ही अचानक एक ऐसा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है कि आवाज़ भी नहीं ज़ुबान से निकलती, वहीं पर खामोशी हो जाती है। तो ये एक इस भाव से ये जिक्र नहीं हो रहे हैं कि भय दिया जाए, एक सच्चाई है, एक सच्चाई के बयान को अगर उससे उसको कहे कि ये भय दिया जाता है, भय नहीं दिया जाता है। प्रार्थना तो यही की जाती है कि प्रभु सबको लंबी उम्र दे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, आंखें बंद कर लेने से वो सत्य से तो दूर नहीं हो जाता है, उसमें तो बदलाव नहीं आ जाता है, क्योंकि तुमने आंखें बंद कर ली हैं, सत्य से आंखें हटा ली हैं तुमने, लेकिन सत्य तो वही है, वो तो वैसा ही है। तो ये जीवन की सच्चाइयाँ, चाहे इनको कठोर कह लें, ये सच्चाइयाँ तो सच्चाइयाँ हैं, कोई चाहता नहीं है कि वो मेरे पे भी लागू हो जाए, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस के से हटकर जीवन में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो महापुरुष संत जनों ने इसीलिए इंसान को बताया कि एक एक पल जो तू बिता रहा है उसको आधार बना ले कि अगले सांस अगर मालिक दे तो वो भी तू सुंदर ढंग से उसको निभा दे, एक ऐसा आधार बना ले, चाहे वो जीवन में चाहे कैसी भी एक परिस्थितियां हो, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे कहते हैं बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन उनके लिए, जो एक स्टम्बल हुए लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाल लिया, परिस्थितियां ऐसी आ गई कि कहीं पर इंसान गिर के और फिर और गिरावट की ओर जा सकता है, लेकिन वो भी है जो संभल जाते हैं और फिर वर्तमान को इस कदर संभालते हुए आगे फिर जितना भी समय हाथ में आता है उसको फिर संभल कर ही वो उस यात्रा को तय कर लेते हैं। तो ऐसी एक शिक्षाएं ये तमाम भक्तों संतों महात्माओं ने ये इंसानों को दी हैं, हर युग में हर दौर में दी हैं, और जिसने भी इसकी अहमियत को जाना, इसको यूं ही फजूल की बात नहीं माना, जिन्होंने इसकी अनदेखी या इसको अनसुना नहीं किया, उन्होंने तो लाभ प्राप्त कर लिया, सतयुग में पैदा हुए लाभ प्राप्त कर लिया, त्रेता में हुए लाभ प्राप्त कर लिया, द्वापर में पैदा हुए तो जीवन सफल कर लिया, कलयुग में पैदा हुए तो उन्होंने भी अपने जीवन के म्यार को ऊंचा कर लिया। तो इस तरह से आज वर्तमान में जीने वालों के लिए भी यही पैगाम, जिसकी अहमियत जैसे कहा कि हर युग हर दौर में रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई फर्क नहीं आया है, वो उसूल वैसे के वैसे हैं। वरना तो बाकी हम देखते हैं कि कई रूल्स बदलते रहते हैं, कंट्रीज़ के रूल बदलते रहते हैं, भिन्न भिन्न पहलुओं के रूल्स बदलते रहते हैं, कई मुल्कों की कॉन्स्टिट्यूशंस में चेंजेस आते हैं, तो उनमें हम बदलाव देखते हैं, लेकिन ये जो सच्चाइयाँ जिनको भक्तों संतों ने बयान किए हैं, या फिर ये प्रभु रूपी सत्य है, या फिर ये जो दुनिया बदलाव में है ये सत्य है, ये हर युग हर दौर में एक सरीका रहा है, इसमें कोई अंतर कोई फर्क नहीं। तो इसलिए जैसे इस यात्रा में भी और पहले भी दास यही जिक्र करता आ रहा है कि जो जो भी इस जीवन के सफ़र को तय कर रहा होता है उसका वो वर्तमान होता है, कोई जनरेशन किसी सदी सेंचुरी किसी युग एज में हुआ हो। तो हर कोई जो इस मानव तन में आता है और जब तक उसके सांस चलते हैं वो उसके लिए वो वर्तमान होता है, और हम जो अब इस वक्त कह सुन रहे हैं हमारे लिए ये वर्तमान है। कहने वाले और सुनने वाले दोनों ने ही इस वर्तमान की संभाल करनी है, इस वर्तमान को ही उपयोगी बनाना है, इस वर्तमान में ही मंजिले मकसूद को पाना है, इस प्रभु से नाता जोड़ना है, इसको आधार बनाना है, इसको हृदय में बसाना है, और इसी ज्ञान की रोशनी से युक्त होकर संसार को रोशन करना है, अंधकार से उभरना और उभारना है, अंधेरों की ठोकरों से अपने आप को भी और औरों को भी बचाना है, भ्रम और भ्रांतियों का नाश करना है। ये वर्तमान में करने लायक कार्य, दुनिया में भी तमाम कार्य हम जीवित हैं इसीलिए तो कर रहे हैं, कोई शरीर पड़ा हुआ है श्वास है नहीं उसको हम क्या कहते हैं, जाओ दुकान पे जाओ सौदा बेचो, वो अब क्या जाएगा। या फिर जो अभी तक कब्र में जा चुके हमसे पहले हो चुके उनको हम कहें, तो इस तरह से ये वर्तमान में दुनिया के हम काम भी वर्तमान में ही तो कर रहे हैं, हमारा खाना हमारा पीना हमारा सोना हमारा जागना हमारा कार्य व्यवहार करना सब कुछ ये हम वर्तमान में ही तो कर रहे हैं, और एक एक पल जो बीतता है वो अतीत हो जाता है। तो इसलिए संभलने के लिए महापुरुष कहते हैं कि इंसानों संभल जाओ, जानो कि कीमत किस चीज़ की है। एक ऐसे ही जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनकी कोई विशेषता नहीं है, जिसके कारण ना इस जहान ना उस जहान में तुम्हारा यश होने वाला है, तो उसको क्यों इतनी विशेषता देते हो, क्यों उसको इतना महत्व देते हो। एक कौड़ी जिसकी जिसका मूल्य है उसको हीरे से भी अधिक महत्ता देकर उसको जीवन में अपने स्थान देते हो ऊंचा, जिसकी कौड़ी कीमत है उसको महत्व देते हो, और जिसकी कीमत है उसको कंकर की तरह पांव के नीचे रौंद देते हो, उसकी तुम्हें ज़रा से भी कदर नहीं है। तो ऐसी नादानी इंसान पहले भी करते आए हैं, हर युग हर दौर में करते आए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि केवल ये कलयुग के हिस्से में आई है, त्रेता में भी ऐसी नादानियाँ हुई हैं, द्वापर में भी हुई हैं, सतयुग में भी हुई हैं। हम उन पात्रों के जिक्र पढ़ते सुनते हैं, हिरण्यकश्यप कोई कलयुग में नहीं पैदा हुआ था, सतयुग की पैदाइश थी, क्योंकि सतयुग महान युग सबसे उत्तम युग, वहाँ पर भी एक्सेप्शन नहीं, वहाँ पर भी नादानियाँ हुई हैं, त्रेता में भी हुई हैं, कहीं हम रावण के पुतले जलाते हैं आज तक, कहीं पर और ऐसे पात्र, कहीं पर हम द्वापर की बातें करते हैं, कहीं दुर्योधन कहीं कंस मिल जाते हैं, जहाँ पर खुद पैगंबर मौजूद है वहाँ पर भी हुई हैं। तो कलयुग में भी इस प्रकार से इंसान भूला है। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि इंसानों तुम्हारा भी जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा अगर इस रूप में सफलता को प्राप्त कर लो। इस रूप में सफलता प्राप्त कर लो कि तुमने इस सत्य को अपनाया, सत्य से नाता जोड़ा, तुमने हृदय में प्रेम को बसाया और प्यार की दौलत के भागीदार औरों को भी बनाया, वाणी से भी दूसरों के दिलों को सांत्वना दी, सुकून दिया, तो फिर तो तुम्हारे एक जीवन की विशेषता बन गई। वरना तो मैं ना मानूं, ये तो चाल ये लगातार चलती आ रही है कि इंसान सुनकर पढ़कर भी फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते। एक इंसान कह रहा है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बार बार 10, 15, 20 बार उसने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। आगे से भीड़ में से आवाज़ आई बैठ जाओ बैठ जाओ, कहते कहते तुम्हारा गला बैठ जाएगा पर हम नहीं बैठने वाले हैं। तो इस तरह से मैं ना मानूं, ये फितरत, ये प्रवृत्ति ये इंसान की रही है। अगर वाकई ही मान जाता तो ये दुनिया कब की सवर गई होती। ये 21वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते आज तक सारे देवता हो जाते। हमसे पहली जनरेशन्स में बदलाव आता जाता और आज तक इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तो गुडनेस सब तरफ वी वुड हैव गॉट टू सी। लेकिन नहीं, मैं ना मानूं, ये प्रवृत्तियां इंसान की रही हैं। तो यही प्रार्थना, यही अरदास, यही शुभकामना की जाती है कि दातार कृपा करे कि सबको सुमति दे, सभी को जागरूकता दे, सभी के हित के लिए ही ये पैगाम, ये संदेश दिए जाते हैं। इसमें सबका हित छिपा हुआ है और भक्त महापुरुष ही सारे जहान को अपना मानते हैं, सारे संसार के इंसानों को अपना मानते हैं, इसलिए उन्हीं का नुकसान होते हुए नहीं देख पाते, इसलिए परोपकार के रास्ते पे चल निकलते हैं। और ऐसे परोपकार के लिए इतने इतने बड़े बलिदान भी देते आए हैं, इतनी कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, केवल और केवल दर्द मन में कि इंसान की ये बहकी चाल, ये भटकी चाल, ये इन्हीं का ही नुकसान कर रही है। तो इसलिए ये परोपकार के तहत ये भक्त महापुरुष संत जन ये लगातार ऐसे योगदान इस संसार को देते आ रहे हैं। और इसी के कारण अगर धरती का कुछ बचाव है तो इसी कारण है। तो ये संत भक्त ही हैं जो धरती के लिए वरदान बनते आए हैं। तो यही प्रार्थना कि ऐसी प्रवृत्तियाँ, ऐसी फितरतें ये हमेशा रहें, इसमें इजाफा आता चला जाए, इसको बढ़ोतरी मिलती चली जाए। इसी में ही बढ़ोतरी आनी चाहिए। जो वैर वास्तव में बढ़ोतरी हो रही है, घृणा ईर्ष्या में, लोभ लालच में इजाफा होता चला जा रहा है, उसी के कारण नुकसान होते जा रहे हैं। जैसे वो भी मिसाल दास देता है कि शरीर में हमारे अंग हैं, तो और दूसरी तरफ शरीर को कभी रोग लग जाता है। अगर रोग लग गया है कोई, या कोई छाला, कोई फोड़ा, फिंसी निकल आई है, तो उसमें हम यही चाहते हैं कि अभी ये ख़त्म ही हो जाए, वैनिश हो जाए। उसका बढ़ना, उस फिंसी का फोड़ा बढ़ना और इस कदर उसका और बढ़ना कि ऑपरेशन करना पड़े, चीर फाड़ करनी पड़े, सर्जरी करनी पड़े, या फिर कोई और रोग हो जाए, उसमें इजाफा, उसमें और फैल जाए, थोड़ी जी एक हिस्से में हाथ पे, स्किन पे एलर्जी है और ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग, तो और ज़्यादा हमारी परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो उसमें हम है तो जिस्म वही है, लेकिन रोग उसमें इजाफा हम नहीं चाहते कि हो जाए। निरोगता में इजाफा हो। अभी कुछ थोड़ी सी मुझे थकावट महसूस होती है तो वो ख़त्म हो जाए, मेरा स्टैमिना कहीं अधिक बढ़ जाए, यानी कि उसमें हम बेहतरी ही सोचते हैं, मांगते हैं, चाहते हैं। तो इसी तरह से ये मानसिकता में जो रोग हैं हमारे, वास्तविकता में हमारे जीवन के रोग बन जाते हैं, शरीर का रोग और जीवन का रोग, तन रोगी या मन रोगी। तो यहाँ पर जीवन में कोई रोग, इस मन में कोई रोग ये आ जाए तो इसको खाद देने की बजाय, इसको कायम रखने की बजाय, इसको और मजबूती देने की बजाय, इससे जल्द से जल्द निजात पा ली जाए और फिर सही मायनों में एक सुकून और चैन महसूस करते हुए सुंदर भावनाओं से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। आप भी यश प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे और औरों को भी हम आनंदित करते चले जाएंगे, औरों को भी हम सुकून देते चले जाएंगे और इस तरह से सारे वातावरण को हम सुखद और सुंदर हम बनाते चले जाएंगे। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। इस समागम के पहले रोज़ भी बहुत आनंद आया और दातार कृपा करें कि बाकी का भी जितना समय है इसी तरह से जैसे आप भक्तों ने प्रेम भक्ति और एक मर्यादाओं का पालन करते हुए मर्यादित ढंग से सुचारुता बनाए रखी आज के दिन भी, तो इसी तरह से आने वाला समय भी इसी भाव से और इसी अवस्था में रहकर आप सभी बिताएं समय को और पूर्ण आनंद प्राप्त करें और अपने आप को और एनरिच करें, जो जो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी धन्य।